मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 23 मार्च 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपनी बात कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा और ये जो उदाहरण है ये सच्चे उदाहरण है, सच्ची घटनाएं हैं और इन उदाहरणों का संबंध दो चीजों से है। पहली चीज तो यह है फ्रेंड्स कि जिसे हम मेहनत करना कहते हैं, किसी भी चीज पर आप मेहनत करते हैं या यूं कह लीजिए कि हम परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि एकदम परफेक्ट काम हो, तो वो बेसिकली होता क्या है, मेहनत क्या होता है और कैसे हम परफेक्शन तक पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह होती है मित्रों कि एक थोड़ा छोटा मोटा राइटर होने के नाते मैं ये बात आपसे कह सकता हूं कि जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो अपने लिखे हुए को रिजेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, या यूं कह लीजिए कि अपने लिखे हुए शब्दों से कुछ इस तरीके से गहरा प्रेम हो जाता है या यूं कह लीजिए कि वो एक तरीके से मानसिक हमारी संतानें बन जाती हैं कि लगता है यार कि इनको कैसे अलग करें, इनको रिजेक्ट कैसे करें, इनको काटें कैसे, इनको यहां तक हो जाता है कि इनको बदलें कैसे। लेकिन चूंकि बदलने की आदत तो शुरू से पड़ी रहती है, नए नए शब्द की आप तलाश करते हैं ना कि नहीं ये शब्द नहीं, इसकी जगह ये रखा जाए या इसको इस अंदाज में ना कह के इस अंदाज में कहा जाए, तो उसकी आदत तो शुरू से पड़ जाती है लेकिन अपने लिखे हुए को काटना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों मुझे कुछ इन सब बातों को लेकर के बड़े खूबसूरत उदाहरण मिले और ये जो उदाहरण है ये कथा कहानियों के उदाहरण नहीं है, ये रियल लाइफ के उदाहरण है। तो सच पूछिए तो मैं इस मोह को नहीं रोक पाया कि मुझे ये बात आप सब तक पहुंचानी चाहिए। तो मित्रों मैं पहले कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जो सच्ची घटनाएं हैं और फिर हम इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे। फ्रेंड्स आपने एक नॉवेल का नाम सुना होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी, जिसे कहा जाता है बूढ़ा मछुआरा, हिंदी में उसका अनुवाद है कह सकते हैं आप बूढ़ा मछुआरा, ओल्ड मैन एंड द सी। ये हेमिंग्वे का लिखा हुआ है, हेमिंग्वे जो अमेरिका के नॉवेलिस्ट थे और जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। और आप सोचिए कि जो हेमिंग्वे साहब हैं उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था और मालूम है क्यों किया था, ये कह के कि मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है। अरे भैया आप इतने महान महान उपन्यास दे रहे हैं और नोबेल प्राइज आपको सम्मान, नोबेल प्राइज का सम्मान आपको समाज दे रहा है, आपको इस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी भूमिका क्या है समाज में, अर्थहीन हूं मैं। तो कहा जाता है कि ठीक है उनको मानसिक कुछ प्रॉब्लम भी थी, खैर वो एक अलग बात है मित्रों। मैं बीच बीच में देखिए जानबूझ करके आपको ये सब बातें बता देता हूं ताकि आप इन सब के नाम से परिचित हों, कहीं आपको इनका उल्लेख मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए तो कम से कम आप जान सकें कि भाई ये कौन है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी कर लेता हूं, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। तो दोस्तों इन्होंने जो अपने ओल्ड मैन एंड द सी है, ताज्जुब करेंगे आप कि इसको लगभग 20 बार लिखा था, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम लेकिन कहा जाता है 20 बार लिखा था। और ओरिजिनल जो इन्होंने नॉवेल लिखा था ये लगभग 2000 पृष्ठों का था, 2000 पेजेस। और मालूम है कि जब ओरिजिनल फॉर्म में ये नॉवेल आया तो कितने का आया मित्रों, मुश्किल से 100 पन्ने। सोच करके देखिए कि कहां तो 1500-2000 और कहां 100। क्या किया उन्होंने काट छांट की। दोस्तों मैंने भी आपसे कहा था, अभी आपसे कहा है कि अपने लिखे हुए को काटना छांटना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप देखेंगे जो पब्लिशर्स होते हैं वो आपके रचना को दूसरों को दे देते हैं कि भैया दूसरा कम से कम अच्छे से काट छांट कर लेगा, क्योंकि अगर राइटर को ही दे दिया गया ना तो मोह में पड़ जाएगा अपनी चीजों से, फिर वो काटेगा छांटेगा नहीं तो दूसरे उसे काट छांट करके संवार करके देंगे और आपको भी पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, हाँ यार मैं कितनी फालतू की चीजें देखो इसमें लिख रहा था, बेकार की चीजें थी, इसने तो इसे बड़ा सजा दिया, बड़ा संवार दिया, तो अच्छा बन जाता है, वो कृति अच्छी हो जाती है। लेकिन ये खुद कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। 1500-2000 पन्नों को आप सोचिए कि 100 पन्नों में कन्वर्ट कर दें, छोटा कर दें। इसी तरह की जो बात है फ्रेंड्स, एक अन्ना कैरेनिना, जो टॉलस्टॉय का जो बड़ा बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है अन्ना कैरेनिना, उसके साथ भी है ये कहा जाता है कि टॉलस्टॉय ने इसे 7 बार लिखा था और ये बहुत मोटा उपन्यास है, बहुत मोटा उपन्यास। अरे बाप रे बाप, एक बार ही अगर उतना मोटा उपन्यास लिख लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने उसे 7 बार लिखा, 7 times उसे करेक्ट किया। अद्भुत है मित्रों, ये मेहनत कहलाती है। आप देख रहे हैं ये परफेक्शन तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं कि कैसे आपका मन ही नहीं भर रहा है, मन ही नहीं भर रहा है, और मांजो और मांजो और मांजो और चमक लाओ और चमक लाओ। मित्रों, रजिया सुल्तान फिल्म का आपने एक गीत सुना है, दिले नादा, ये दिले नादा है ना, ये दिले नादा। कहा जाता है कि इसका जो अंतरा है, आज भी सुनिए तो सुनते वक्त जो है ना दिल बिल्कुल कुछ कुछ होने लगता है, कलेजा मतलब कराह उठता है कि यार क्या बात उन्होंने लिखी है। मित्रों, जानिसार अख्तर साहब ने इसे लिखा है, जानिसार अख्तर ने, ये दिले नादा। और कहा जाता है कि कमाल अमरोही साहब जो ने इसको लिखवाने के लिए, इसको लिखवाने के लिए इस अंतरे को 100 बार इसे लिखवाया और 100 अलग अलग तरीके से लिखवाया, 100 बार इस अंतरा को लिखा गया है, ये दिले नादा, 100 times। और 100 times लिखने के बाद जब उनका मन भरा कि हाँ ये अब बना है, अब बनी है बात, तो देखिए कि क्या चीज सामने में आई है कि आज भी आप उसे सुनिए तो अद्भुत, आपको मतलब आप ज्यों के त्यों तो रह ही नहीं जाएंगे, आप अंदर से कुछ बदलने लगेंगे, अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं, उदाहरण और भी हैं, बहुत से भरे पड़े हैं, लेकिन मेरी समझ से 3 ही पर्याप्त होंगे। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स, कि जिसे हम मेहनत करना कहते हैं, वो बेसिकली मेहनत होती क्या है? मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह से लेकर के और शाम तक या रात तक लगे हुए हैं, छुट्टियों में भी लगे हुए हैं, रात में उठ उठ कर लगे हुए, ये रियल मेहनत नहीं होती है। मेहनत का संबंध आवर्स से नहीं होता है, मेहनत का संबंध ये होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, पहली बात तो है कि उसे कितने लगन से कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि लगन से करने के साथ साथ हम उसमें कितना अधिक सुधार करने के इच्छुक हैं, क्या हम सही में परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, और अगर परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या हम अपनी ही चीजों को रिजेक्ट करने को तैयार हैं, यानी कि हमारे अंदर इतना साहस है कि हम अपनी ही चीजों को नकार सके। अपनी चीजों को नकारना, देखिए दूसरों की चीजों को नकारना तो बहुत आसान है, हम लगातार नकारते ही रहते हैं, लगातार नकारते, अरे ये तो फालतू है, अरे ये तो बेकार है, अरे ये क्या लिखा है, अरे ये क्या बनाया है, हम करते रहते हैं। लेकिन न तो हम अपनी चीजों को खुद नकार पाते हैं, और यदि कोई दूसरा नकार दे तो आप देखिए कि क्या हालत होती है, चेहरा उतर जाता है, और हम अपने को रोक भी नहीं पाते, हम ये कहने से नहीं चूकते हैं कि भैया तुम जरा सा बना करके दिखा दो, हमारे मुंह से ये निकल जाता है। तो हमारे अंदर की यह खींच है, ये हमारे अंदर का आक्रोश है कि तुम जरा बना करके दिखा दो, बड़े वो तो 30 मार्का बनते हो। तो मित्रों, जो रियल जो मेहनत है वो सच पूछे तो परफेक्शन तक पहुंचने की मेहनत होती है। हम ढेर सारी चीजें नहीं करते हैं, हम कुछ चीजें करते हैं, अपने लिए चुन लेते हैं, हाँ उन कुछ चीजों को कई कई तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, उनकी घिसाई करते रहते हैं ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा चिकनाहट आ सके, उनमें ज्यादा से ज्यादा चमक आ सके, उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पैदा करने की ताकत आ सके। अब आपने जिस क्षेत्र को भी चुना है, उस क्षेत्र में आप कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, उसके अपने अलग अलग तरीके हैं। मैंने तो यहां जो 3 बातें आपसे कही हैं वो राइटिंग के फील्ड की कही है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे कहा जाता है कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, इस गाने को जब फिल्माया जा रहा था, इस गीत को, तो कहते हैं कि 2 साल लग गए इसको फिल्माने में, मुगले आजम का ये गीत है, 2 साल लग गए, मतलब जो डायरेक्टर थे हमारे वो डायरेक्टर संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे, और मधुबाला जी परेशान हो रही थी कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये कब ओके होगा। और जब वो ओके होकर के आया तो आप देखे कि मुगले आजम फिल्म ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं मेहनत, श्रम, और इसे ही कहते हैं समर्पण। सच्चा समर्पण खुद को रिजेक्ट करने में होता है, सच्चा समर्पण खुद को समेटने में नहीं होता है, खुद को प्रेम करने में नहीं होता। मैं जो यहां प्रेम करने की बात कर रहा हूं वो इस रूप में नहीं कह रहा हूं मित्रों कि आप अपने को प्रेम मत कीजिए और अपने को रिजेक्ट मत कीजिए, अपने को आप लगातार बांधे रखिए, अपने आप को आगोश में लिए रखिए। मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इस सेंस में कह रहा हूं कि अपनी चीजों को रिजेक्ट जब हम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर बनाने के लिए ही रिजेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही फ्रेंड, जैसे कि माँ बाप पिता जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे को डांट देते हैं, अपने बच्चे को थप्पड़ भी मार देते हैं, तो किस लिए डांट देते हैं, किस लिए थप्पड़ मार देते हैं? क्या उनकी दुश्मनी होती है या कोई बदला ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। तो हमें अपने काम के साथ भी कुछ इस तरह का ही व्यवहार करें जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं। कभी उन्हें डांटें, कभी उन्हें थप्पड़ भी मारें, फिर कभी उन्हें मना भी लें। तो मित्रों, ये कुछ तीन उदाहरणों के जरिए मैंने ये थोड़ी सी बात की है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के जरिए हम लगातार निरंतर सुधार की ओर बढ़ते चले जाते हैं, निरंतर हम परफेक्शन को हासिल करने की ओर की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, अब आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। मित्रों, आज जैसा कि आपको मालूम है शुक्रवार है, यानी कि कल और परसों आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो मैं दो दिनों के लिए अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। फ्रेंड्स, नमस्कार।